दिन भर रविवार 27 सितंबर मैं हूं निखिल रंजन। सिलिकॉन वैली में भारतीय प्रधानमंत्री से मिले सूचना तकनीक के दिग्गज, अब फेसबुक वाले जकरबर्ग से मिलने की तैयारी, क्यों हो रही है प्रधानमंत्री की इतनी खातिर?
अगले 3-4-5 सालों में 50 करोड़ लोग इंटरनेट के ऊपर आएंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगे, इसलिए मोदी जी को यहाँ पे इसलिए इतनी VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बड़े सपने आ रहे हैं।
बिहार में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी के एक और सांसद ने जताई नाराजगी, फैला उजियारा में आज बात कबीर की, वो शख्स जिनकी वाणी पर हिंदू मुसलमान दोनों का है दावा।
कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
BBC समाचार, अमल चौधरी से। कैलिफोर्निया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक की दुनिया से जुड़े शीर्ष दिग्गजों से मुलाकात की। सबसे पहले PM टेस्ला के CEO एलन मस्क से मिले। मस्क से मुलाकात के बाद PM मोदी ने उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया। PM ने कहा कि वो जिन विदेशी कंपनियों को भारत में देखना चाहते हैं, टेस्ला उनमें से एक है। साथ ही उन्हें एप्पल के CEO टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नंडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचई समेत कई दिग्गज कंपनियों के CEO से मुलाकात की। फ्रांस ने पहली बार सीरिया में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बताया गया है कि फ्रांसीसी विमानों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनकी पहचान पिछले 15 दिनों में एक अभियान के तहत की गई थी। बयान में कहा गया है कि फ्रांस ने क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद से ये काम किया। फ्रांसीसी विमान इससे पहले इराक में IS के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर चुका है। ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्ला अली खामनी ने मक्का में हुए हादसे पर सऊदी अरब से माफ़ी मांगने को कहा है। अपनी वेबसाइट पर एक लेख में उन्होंने लिखा कि मुस्लिम देशों को सऊदी अरब से कई सवाल पूछने हैं जिसका जवाब उसे देना होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी को दूसरों पर गलती डालने की जगह खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसमें मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवार वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपना बचाव करते हुए सऊदी के विदेश मंत्री अदल अल जुबैर ने कहा कि ईरान इस हादसे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा,
If mistakes were made, we will, those who made them will be held accountable, and we will make sure that.
अगर किसी से गलती हुई है तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसके दोषियों को सजा मिले। इतना ही नहीं, हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आगे से इस तरह का कोई हादसा दोबारा ना हो। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ईरान के नेता थोड़ा और समझदारी से काम लेंगे और किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमारी जाँच खत्म होने का इंतज़ार करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदल अल जुबैर। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को मक्का में हुई भगदड़ में कम से कम 717 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 863 लोग घायल हुए थे। हज में पिछले 25 सालों के दौरान ये सबसे बड़ा हादसा है। ठंड में फ्रॉस्टबाइट के कारण अपनी 9 उंगलियां गंवाने वाले जापानी पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान अंतिम क्षणों में छोड़ना पड़ा। नोबू काजू कुरुकी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मैंने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन बर्फ़ पर चलने में काफ़ी समय लग गया। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो जिंदा वापस नहीं जा पाऊँगा। 33 साल के कुरुकी ने चोटी के करीब पहुँचकर इस अभियान को छोड़ने का फैसला किया। फ़लस्तीनी और इसराइली सुरक्षाकर्मियों के बीच यरूशलम स्थित अल अक्सा मस्जिद की परिसर में फिर झड़पें हुई हैं। पुलिस के अनुसार जब फ़लस्तीनियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन और आप हमें सुन रहे हैं bbchindi.com और अपने मोबाइल पर भी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करने के साथ ही सुरक्षा परिषद में सुधार पर G4 देशों की मेज़बानी करने के बाद वो सिलिकॉन वैली पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने तकनीकी जगत की दिग्गज कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEOs के साथ मुलाकात और चर्चा की है। उन्हें ये बताया है कि भारत में उनके लिए कितनी संभावनाएँ हो सकती हैं, साथ ही ये भी कि भारत को उनकी कितनी ज़रूरत है। सूचना तकनीक के महारथियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वो भारत के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं। BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय भी सम्मेलन में थे और अब से बस कुछ ही देर पहले मैंने उनसे इस बारे में बात की।
देखिए निखिल, अब से कुछ देर में वो यहाँ फेसबुक के हेडक्वार्टर्स पर जाएंगे जहाँ फेसबुक के प्रमुख है मार्क जुकरबर्ग के साथ मिलकर वो लोगों से सवाल जवाब का जो एक सिलसिला होगा वहाँ पर वो शुरू करेंगे। बहुत लोगों ने फेसबुक पर अपने सवाल भेजे हैं, प्रधानमंत्री ने जो फेसबुक पर वेबसाइट बनाई थी उसके जरिए, तो वो उसके फौरन बाद वो वहाँ से गूगल के हेडक्वार्टर्स पर जाएंगे और वहाँ भी एक हैंगआउट करने की कोशिश है उनकी, वहाँ भी लोगों के जो कुछ सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। उसके बाद दिन में वापस वो अपने होटल लौट रहे हैं और वहाँ अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो रही है उनकी, और वहीं पर साफ सुथरी ऊर्जा पर एक तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी है। उसके बाद एक छोटा सा बेहद ही रोचक सा एक उनका कार्यक्रम है जिसको कि इंडिया यूएस स्टार्टअप कनेक्ट कह रहे हैं, कि जो यहाँ की द इंडस एंटरप्रेन्योर करके जो एक ग्रुप है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है एंटरप्रेन्योर्स का, वो बात करेगा उनसे कि कैसे भारत में एक स्टार्टअप कल्चर, कि कैसे अपना कुछ शुरू करने का की जो एक संस्कृति होती है, एक कल्चर होता है, उसको बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए सरकार किस तरह से मदद कर सकती है, उस पर एक बैठक होगी। और फिर शाम में एक जो जाने माने यहाँ पर माने जाते हैं सलमान खान, जो खान एकेडमी चलाते हैं, इंटरनेट के जरिए मुफ्त शिक्षा देते हैं स्कूलों के स्तर के लिए और हाई स्कूल तक की शिक्षा होती है वो, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इनोवेशन माना जा रहा है अमेरिका के हर अलग अलग स्कूलों में सलमान खान की जो खान एकेडमी है उसको रेकमेंड किया जाता है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात है। और फिर शाम में एक रंगारंग कार्यक्रम आप कह सकते हैं यहाँ का जो SAP सेंटर है उसमें होने जा रहा है, जिसमें लगभग 18,000 से 20,000 के बीच लोगों के आने की उम्मीद है पूरे स्टेडियम में।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज जब सुबह मुलाकात की तकनीकी जगत के दिग्गजों से और फिर उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई, फिर उन्होंने जो तकनीक पर भाषण दिया डिजिटल इंडिया पर, उस दौरान कैसा माहौल था, लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी थी?
देखिए, बहुत लोगों ने इसे बिल्कुल ऐतिहासिक कहा कि एक देश का प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गजों के साथ एक मंच पर विचारों का आदान प्रदान करें। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि किस देश में आपने देखा है इस तरह की बात होते हुए, जहाँ पर बहुत लोगों का ये कहना था कि उन्हें खासकर जैसे विनोद खोसला हैं, सन माइक्रोसिस्टम्स के वो संस्थापकों में से हैं और एक बहुत बड़े निवेशक हैं, उनका कहना था कि उन्हें काफी अचंभा हुआ कि जब प्रधानमंत्री की जो समझ थी तकनीक की, टेक्नोलॉजी की और उसको कैसे उसके प्रभाव की, उनके उम्मीद से कहीं बेहतर निकले प्रधानमंत्री। और उन्होंने ये भी कहा कि किस टेक्नोलॉजी के कहां किस तरह से इस्तेमाल हो, ये इस स्पीच से लग रहा था कि प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा था। जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा था कि जो डिजिटल इंडिया की जो उनकी सोच है वो और यहाँ के टेक्नोलॉजी जगत के जो लीडर्स हैं वो लगभग एक ही धरातल पर है, एक पन्ने पर है, और वो एक उस तरह की बात थी जो सिलिकॉन वैली उनसे सुनने की उम्मीद कर रहा था। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाषण बहुत अच्छा था, उसमें बहुत ही जो जिसको हम बोलते हैं क्लेवर लाइन्स लिखे हुए थे, स्मार्ट वन लाइनर्स लिखे हुए थे, लेकिन ये मौका था एक ठोस पॉलिसी स्पीच देने का जो शायद प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, और एक फील गुड स्पीच जिसे हम कहते हैं कि वो देकर के सीमित रह गए। लेकिन मोटे तौर पर लोगों को यही लग रहा था कि जो एक संवाद की जरूरत थी सिलिकॉन वैली और भारत के बीच में, पहले से ही काफी एक अच्छे संबंध है, उसको एक अगले मुकाम तक ले जाने की जो कोशिश है उसमें प्रधानमंत्री काफी हद तक कामयाब हुए। मैंने उसी शाम जिस वक्त उनका भाषण हो रहा था, मैंने यहाँ पर जो विवेक वाधवा है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और यहाँ पर एक तरह से उन्हें स्टार्टअप गुरु भी कहा जाता है, उनसे बात किए जानने के लिए कि सिलिकॉन वैली की क्या उम्मीदें हैं, क्या सुनना चाहता है प्रधानमंत्री मोदी से सिलिकॉन वैली, तो सुनिए क्या कहना था उनका।
सिलिकॉन वैली में वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट मोदी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड हैं हम, क्योंकि पिछले साल में कुछ नहीं हुआ, पर उम्मीद है कि अगले 2-3-4 सालों में वो करेंगे, कि टेक्नोलॉजी के साथ हर जने के पास इंटरनेट एक्सेस होएगा, पढ़ाई लिखाएंगे उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे इंडिया का।
एक तरफ वो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबके जो लीडर्स हैं उन सबसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन
वो इसलिए मुलाकात कर रहे हैं बिकॉज वो देख रहे हैं कि इंडिया में इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अगले 3-5 सालों में 50 करोड़ लोग इंटरनेट के ऊपर आएंगे और इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होएगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। इसलिए मोदी जी को यहाँ पे इसलिए इतनी VIP ट्रीटमेंट मिल रही है बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बड़े बड़े सपने आ रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंडिया में और वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
लेकिन मेरा सवाल भी वही है कि एक तरफ अगर टेक्नोलॉजी कंपनियाँ सपने तो देख रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से अगर पूछे या उनके आसपास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे पूछे कि क्या प्रोजेक्ट लून हो, चाहे प्रोजेक्ट ड्रोन हो जो फेसबुक का है, या प्रोजेक्ट जो वाईफाई है माइक्रोसॉफ्ट का है, उनको आप लाने आने देंगे इंडिया में इंटरनेट लगाने के लिए, वो बिल्कुल चुप रह रहे हैं इसमें।
बिकॉज जब वाईफाई आएगा, लून आएगा, तो इंटायर टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह, उनकी बिजनेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होगी कि उनसे हम डेटा खरीदें, क्योंकि फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक और गूगल का यह प्लान है कि सारी दुनिया में वाईफाई प्रोवाइड करें और ऑलमोस्ट फ्री हो। तो अगर वाईफाई ऑलमोस्ट फ्री हो तो हमें डेटा प्लान से क्या ज़रूरत है, टेलीफोन कंपनी से खरीदने की क्या ज़रूरत है। इट कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो टेक कंपनीज इसलिए मिल रही हैं मोदी जी से कि ताकि उनको प्रिपेयर कर सकें, ताकि उनकी सपोर्ट ले सकें। पर वहाँ पे जो से बिग इंडस्ट्री इंडिया में, दे वुड बी फाइटिंग इट, वो हर कोशिश करेंगे रोकने को ताकि उनकी बिजनेस में इम्पैक्ट हो, बट वो लूज़ करेंगे, दे विल लूज़, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 5 years or so। सारी दुनिया में इंटरनेट एक्सेस होएगा, सारी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होएगी।
सिलिकॉन वैली से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय बात कर रहे थे स्टार्टअप गुरु विवेक वाधवा से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब रुख करते हैं फ्रांस का। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि फ्रांस की सरकार इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध लड़ाई में प्रतिबद्ध है, और केवल बातों में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में। शनिवार को इस बयान के बाद ही फ्रांस की ओर से पहली बार सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इससे पहले फ्रांस ब्रिटेन की तरह केवल इराक में इस्लामिक स्टेट पर हमले कर रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी फ्रांस की सुरक्षा पर खतरा होगा ऐसे हमले किए जाएंगे। पूरा ब्यौरा सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
फ्रांस ने पहली बार सीरिया में चरमपंथी संगठन IS यानी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बताया गया कि फ्रांसीसी विमानों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनकी पहचान पिछले 15 दिनों में एक अभियान के तहत की गई थी। कार्यालय ने बयान में यह भी कहा कि जब भी फ्रांस की सुरक्षा पर सवाल उठेगा फ्रांसीसी सरकार की ओर से सख्त कदम लिए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने इस महीने के शुरुआती दिनों में कहा था कि उनकी सरकार हवाई हमलों के लिए जहाजों को सीरिया भेजने का सोच रही है, और ये इसलिए क्योंकि उनके अनुसार फ्रांस के विरुद्ध हमलों की योजना बनाई जा रही है। हवाई हमलों से पहले शनिवार को न्यूयॉर्क में एक पत्रकारों के सम्मेलन में फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने कहा,
La France est à la fois déterminée à lutter contre Daesh, pas en théorie, en effet, et
फ्रांस इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध लड़ाई में प्रतिबद्ध है, केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं पर वास्तविकता में भी। फ्रांस अपनी ओर से सीरिया को एक ऐसे क्षेत्र में परिवर्तित करने में पूरी राजनीतिक सहायता करना चाहता है जहां हर समूह को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाए। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस के शब्द। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से आए बयान में ये भी कहा गया था कि फ्रांस ने क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद से सीरिया में ये हमले किए। फ्रांसीसी विमान इससे पहले इराक में IS ठिकानों पर हवाई हमले कर चुके हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन पिछले एक साल से इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इससे पहले ग्रेट ब्रिटेन की तरह फ्रांस ने भी अपने हवाई हमलों को केवल इराक तक सीमित किया हुआ था। यूरोप में चल रहे प्रवासी संकट के लिए भी फ्रांस पर आरोप लगे थे कि वादे के मुताबिक फ्रांस ने प्रवासियों को शरण नहीं दी। सीरिया में चल रहे आंतरिक युद्ध की वजह से 2011 से अब तक लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सीरिया छोड़कर जाने वाले कई लोग पड़ोसी देश जैसे तुर्की, लिबनान और जॉर्डन पलायन कर चुके हैं और बाकी यूरोप की ओर जा रहे हैं।
सीरिया के इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर फ्रांस ने शुरू किए हवाई हमले। रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
बीबीसी रेडियो पर सुन रहे हैं आप दिन भर निखिल रंजन के साथ। और अब रुख करते हैं बिहार का। चुनाव में टिकटों के बंटवारे का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बार फिर सिरदर्द बन रहा है। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कल ये कहा था कि पैसे लेकर अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। आज पार्टी के एक और सांसद छेदी पासवान ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। छेदी पासवान अपने बेटे को टिकट न दिए जाने से नाराज हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा,
अरे अश्वनी कुमार चौबे के बेटा को मिला, सीपी ठाकुर के बेटा को मिला, नरेंद्र सिंह के दो दो बेटा को मिला, तो हम लोग भी चाहते कि हम लोगों का बेटा को मिले। बेटा कोई एकदम शुद्ध रूप से राजनीतिक आदमी है, 2004 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है। सारे पार्टी के लोग सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, सोबर लड़का है, संगठन में अच्छा काम करता है, तो उसको मिलना चाहिए। तो यही बस मेरा शिकायत है और कोई खास बात नहीं है। हम पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी के उम्मीदवार भी जिताएंगे।
पार्टी बीजेपी पार्टी के सांसद छेदी पासवान। हालांकि बीजेपी ऊपरी तौर पर इन आरोपों से बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आ रही है। पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से जब बीबीसी ने इस बारे में पूछा तो उनका कहना था,
देखिए बीजेपी में एक टिकट पे कई दावेदार हैं, क्योंकि हम जीतने वाली पार्टी हैं और इस वजह से एक सीट पर कई दावेदार लोग हैं और कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है और एक ही तरह के उम्मीदवार होते हैं, चुनाव करना आसान काम नहीं है। फिर भी बहुत ट्रांसपेरेंसी से सर्वे करा के कार्यकर्ताओं से पूछकर केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय किया है और जो भी आरोप लगे हैं सब गलत हैं। इस तरह जिनको टिकट नहीं मिलता है वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है, मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं और इस नाते मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी कि कहीं भी टिकट बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बता रहे थे कि बीबीसी में सब कुछ ठीक है, पार्टी जो है अपने आदर्शों पर कायम है। और अब बात फैलाओ जियारा की। सुनील खिल्लानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस हिंदी में फैलाओ जियारा 12वीं कड़ी में जानिए कबीर के बारे में, जिन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। कबीर अपनी साफगोई और क्रांतिकारी विचारों के कारण आज भी हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। आप तक पहुंचा रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
जनवरी का महीना है, जगह है जयपुर और जो आयोजन हो रहा है उसे जयपुर साहित्य उत्सव के नाम से जाना जाता है।
We gather here every year to celebrate words and literature.
आजाद ख्याल का ये विश्व का संभवतः सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। साल 2015 के इस आयोजन में लगभग 2.5 लाख लोग 300 लेखकों को सुनने पहुंचे, वो भी ऐसे समय में जब भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से हर तरफ से खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में आयोजन उस मंच की तरह हो जाता है जहां अलग अलग विचारधाराओं के लेखक और बुद्धिजीवी चारों दिशाओं से जुटते हैं, जहां आजाद ख्यालों को उड़ने के लिए खुला आसमान मिलता है। यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र बार बार होता है। 15वीं शताब्दी के इस कवि को समूचे उत्तर भारत में मोटे तौर पर संत माना जाता है। कई लोग उन्हें ईश्वर का दर्जा भी देते हैं। यहाँ हर कोई कबीर का उल्लेख कर रहा है।
This was our version of Abide with Me, and the words that were in Hindi were a response by the Sufi saint Kabir Das.
But I'm wasting my time, says Kabir. Even death's bludgeon about to crush your head won't wake you up.
भारत के इतिहास में कबीर जैसी दूसरी आवाज शायद कोई नहीं जो पाखंड पर इतना तेज प्रहार करती है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के सीधे सरल सपाट शब्दों में।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में।
फिरा हूँ क्या फूले फूले फूले, जब 10 मास उर्ध मुख होते, 100 दिन काहे को भूले, जो माखी सहते नहीं बिहुर, सोच सोच धन कीन्हा, मुए पीछे लेहु करी, भूत रहन नहीं दीन्हा, देहरी लेबर नारी संग हैं, आगे संग सुहेला, मृतक थान ले संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला, जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की इह बड़ाई, रामन रमसी मोह के माते, पर हुकाल बस कुआं, कहे कबीर नर आप बंधायो, जो ललनी भ्रम सुआ।
कबीर की इस वाणी का अर्थ है,
हे मानव तू किस घमंड में हर वक्त फूला रहता है, तुझे क्या वो महीने याद नहीं जब तू माँ के गर्भ में उल्टा मुंह किए पड़ा था। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है वैसे तूने धन इकट्ठा किया, और तेरे मरते ही धन तो सब घरवाले ले लेंगे लेकिन तेरे शरीर को घर में नहीं रहने देंगे। पत्नी घर की दहलीज तक साथ निभाएगी और संगी साथी श्मशान तक, उसके बाद तो तेरी आत्मा को अकेला ही होना है। शरीर तो जलकर भस्म हो जाएगा या जमीन में दफन होकर कीड़े मकोड़ों का आहार बनेगा। जिस शरीर पर तू घमंड करता है वो कच्चे घड़े सा टूट जाएगा। हे मानव मोह के वश में तू राम का चिंतन नहीं करेगा तो बस काल रूपी कुएं में ही गिरेगा। घर संसार के जिन चक्रों को तू ईश्वर की भक्ति में बाधक समझता है उनमें तू खुद वैसे ही फंसा है जैसे दानों के लालच में तोता जाल में फंस जाता है।
कवि और लेखक अरविंद मेहरोत्रा ने कबीर के दोहों का अनुवाद किया है। वो कहते हैं,
He is constantly haranguing you, you know, constantly drawing your attention to something.
वे हमेशा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहते हैं। आपका ध्यान लगातार किसी एक बात की ओर खींचते हैं। बहुत तार्किक तरीके से बात कहते हैं, जैसे किसी ने आपको गिरेवान से पकड़कर झकझोर दिया हो। उनकी बातों में उपदेश होता है, लेकिन वो इतनी सरल भाषा में कहते हैं कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं।
यदि आप भारत के इतिहास में झांक कर देखें तो पाएंगे कि कविता बौद्धिक अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम रही है, जिसने समाज और राजनीति को आईना दिखाने का काम किया है। पश्चिमी जगत में कविता को अक्सर भोग विलास के तौर पर देखा सुना जाता है, लेकिन भारत में कविता विचारों के प्रवाह का जरिया रही है। शायद इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में निहित हों, जहाँ किसी जमाने में हर हाथ में कागज कलम नहीं होती थी और तब सब लोग शायद जानते भी नहीं थे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत में लोग छंदों में सोचते थे, उनके विचार काव्य में आबद्ध होते थे जो लंबे समय तक याद रहते थे, जिनमें गणित, दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक हर तरह के विचार समाये होते थे। ये एक कला है जिसमें कबीर ने स्वयं को निपुण बनाया। कबीर के जीवन के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कबीर की देह फूलों में बदल गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू उनका अंतिम संस्कार करें या मुसलमान उन्हें दफन करें। कबीर के बारे में न जाने ऐसे कितने किस्से कहानियां हैं, लेकिन जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि कबीर का संबंध 15वीं सदी से है। उनका ताल्लुक कपड़ा बुनने वाले मुसलमानों की एक जाति से था और वो बनारस में रहते थे। जो तथ्य पता नहीं है उन्हें तलाशने के लिए मैं बजरडीहा जा पहुंचा हूं, जो बनारस के पश्चिमी छोर पर बसा निचला इलाका है। बारिश के मौसम में यहां अक्सर पानी भर जाता है। यहां मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जिन्हें अंसारी या जुलाहा कहा जाता है। जुलाहे जो कपड़ा बुनते हैं। कबीर की जड़ें इन्हीं बुनकरों में हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन बुनकर अब यहाँ कम होते जा रहे हैं। पहले कपड़ा बुनने वाली मशीनें आईं, फिर चीनी सूत आया और अब बनारसी साड़ियाँ सूरत में भी बनने लगी हैं। बनारस के तंग कमरों में काम कर रहे इन बुनकरों के बीच आकर आपको कबीर की आवाज़ महसूस होने लगती है। कबीर के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लिंडा हेस कहती है,
He challenges us. He says, "Hey you." You know,
वो हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, ए सुनो, तुम संत हो, मूर्ख हो, पुजारी हो या मुल्ला, कोई भी हो। कभी कभी वो हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता, हमारी पाखंड और इस तरह की तमाम दूसरी चीजों को खुली चुनौती देते हैं। पहली बार जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमारे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, निसंदेह वो हमारे बारे में ही कह रहे होते हैं।
कबीर किसी को नहीं बख्शते, सबको आड़े हाथों लेते हैं। धर्म का सहारा लेने वाले हिंदू पंडित और मुसलमान मौलवी खासकर उनके निशाने पर होते हैं, जो कथित निचली जाति के लोगों को दान दक्षिणा के बदले ईश्वर से मिलाने की बात करते हैं। कबीर कहते हैं,
जे तू बांभन बम्हनी जाया तो आन वाट ने काहे ना आया, जे तू तुरक तुरक नी जाया तो भीतरी खतना क्यों न कराया।
कबीर के दोहों का अनुवाद करने वाले अरविंद मेहरोत्रा कहते हैं,
There is no aspect of religion that he leaves untouched. Whether it's, you know, whether it's a sacred...
धर्म का कोई ऐसा पहलू नहीं जो कबीर से अनछुआ रहा हो, फिर वो चाहे कोई पवित्र ग्रंथ हो या जगह, पूजा पाठ की बात हो या दिन में कई बार प्रार्थना करने की आदत।
कबीर भक्ति आंदोलन के सबसे मशहूर संतों में से एक हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कविता और गीतों का इस्तेमाल किया।
मैबड़ 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 माटी मण दस ना जट का दस गाठी, मैं बाबा का जोध कहाऊं अपनी मारी गींद चलाऊं।
भक्ति आंदोलन वैसा ही था जैसा इस्लाम में सूफी आंदोलन, दोनों का मूल विचार एक ही था, जिसमें खुदा और बंदे, भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं था, न कोई पुजारी, न कोई मुल्ला, न कोई जाति और न ही कोई कर्मकांड। गंगा नदी के किनारे बसे बनारस को भारत का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। हिंदू इसे काशी कहते हैं। इसे भगवान की शिव की पसंदीदा जगह कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बनारस में हजारों मंदिर और ऐसी जगहें हैं जिनका संबंध अलग अलग भगवान और संतों से है। कबीर चौरा और कबीर मठ ऐसी ही जगहें हैं। कहते हैं कबीर यहाँ एक झोपड़ी में रहते थे। यही वो चबूतरा है जिस पर बैठकर कबीर लोगों को उपदेश देते थे और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ लकड़ी की बनी चरण पादुकाएं रखी हैं। कहा जाता है कि ये कबीर की चरण पादुकाएं हैं। मठ का संचालन कबीर के ऊंची जाति के अनुयायियों के हाथों में है। यहाँ आप उन अनुयायियों को देख सकते हैं जो कबीर के दोहे गाते हैं। कबीर उनके लिए एक संत हैं जिनका वो बहुत सम्मान करते हैं। कबीर की वाणी को एक ग्रंथ की शक्ल में संकलित किया गया है जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। ये उन कई तरीकों में से एक तरीका है जिससे ऐतिहासिक चरित्रों को याद किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है। अरविंद मेहरोत्रा कहते हैं,
Every now and then, you know, someone comes up and tells you exactly how it is.
कबीर को जो कहना होता था दो टूक शब्दों में मुंह पर कह देते थे, बात फिर चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की या फिर जात पात की। हालांकि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दुनिया बदल दी हो।
काशी के भीड़ भाड़ वाले घाटों की दूसरी ओर यानी कि गंगा के पूर्वी तट पर रेत ही रेत पसरी पड़ी है। खाली जमीन वाले इस हिस्से को कटेसर के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्थानीय लोग कभी कभी इसे मगहर के नाम से भी बुलाते हैं। ये वही जगह है जिसके बारे में बीजक में कहा गया है कि आप वहां मरे तो अगले जन्म में गधे बनेंगे। लेकिन ठीक इसके उलट काशी के घाट पर मृत्यु सौभाग्य की बात मानी जाती है। हो सकता है कि कबीर गंगा के पूर्वी तट पर तब गए हों जब उनके तार्किक दोहों से क्षुब्ध लोगों ने उन्हें बाहर निकाल लिया हो, या शायद ऐसा हुआ हो कि कबीर स्वयं अपनी मर्जी से यहाँ चले आए हों। इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कबीर आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं और मानो सोच रहे हों नदी की दूसरी ओर बसा ये व्यस्त शहर भी कैसा नगर है। कबीर की तरह इन शब्दों में असहमति का स्वर है। आज के भारत में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे असहमति की आवाजों को अक्सर देश से बाहर निकाल दिया जाता है। यह किताबों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर रोक लगा दी जाती है। कई राजनीतिक और धार्मिक समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आहत प्रतीत होते हैं। वो अदालतों पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा सके। सलमान रुश्दी जैसे लेखकों की आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसे में कबीर और उनके दोहे रह रहकर याद आते हैं।
फैला उजियारा की ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। कैलिफोर्निया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक की दुनिया से जुड़े शीर्ष दिग्गजों से मुलाकात की। पहले पीएम टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मिले, साथ ही उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कई दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। फ्रांस ने पहली बार सीरिया में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। बयान में कहा गया है कि फ्रांस ने क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद से ये काम किया। ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्ला अली खामनी ने मक्का में हुए हादसे पर सऊदी अरब से माफ़ी मांगने को कहा है। अपनी वेबसाइट पर एक लेख में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम देशों को सऊदी अरब से कई सवाल पूछने हैं जिसका जवाब उसे देना होगा। ठंड में फ्रॉस्टबाइट के कारण अपनी 9 उंगलियां गंवाने वाले जापानी पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान अंतिम क्षणों में छोड़ना पड़ा है। नोबुकाजू कुरुकी ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।